ॐ शांति, ॐ शांति। बाबा कहते हैं इस समय सब मनुष्य आत्मा ही तमो प्रधान है। क्यों तमो प्रधान है? बाबा कहते हैं माया रावण ने सबको श्रापित कर दिया है, उस श्राप के कारण तमो प्रधान है। और श्रापित होने के कारण तमो प्रधान हो गई, इसलिए फिर दुखी भी हो गई। तो रावण का श्राप सबको दुखी बनाता है। तो जब सब आत्माएं ऐसे श्रापित और दुखी हो जाती है तब भगवान आते हैं। और श्राप कैसे दूर करते हैं भगवान? अपना परिचय देकर कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। इस याद के बल से ही आत्मा का श्राप खत्म होगा, दुख खत्म होगा। और बाबा आकर के वरदान देते हैं, वर देते हैं। तो माया श्रापित करती है और बाबा वर देते हैं, वर्षा देते हैं, वरदान देते हैं, जिससे फिर आत्माएं सुखी हो जाती है। पर यही खेल है, इस संसार का यही खेल है। तो श्रापित भी हो गई है इस समय और पूरी जंक लग गई है, लोहे की बन गई, जंक लग गया और एकदम काली हो गई है। तो एक ही उपाय है जंक उतरने के लिए, एक ही उपाय है और वो है बाबा की याद। इसको बाबा कई बार जैसे हम लोग भी कहते हैं लेजर बीम है। तो लेजर बीम जब लगती है ना तो भी तो कैसे जो कठोर से कठोर चीज भी होती है वो उसका वो टूट जाती है। तो अभी जो जंक लगी हुई है आत्मा पर ये केवल याद की लेजर बीम से ही निकलेगी, जिसको बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग। तो उसी के आधार से ही आत्मा पावन बनेगी, वर्षा प्राप्त करेगी और सदा सुखी बन जाएगी। और उसके लिए बाबा एक युक्ति बताते हैं। कौन सी युक्ति है? माया ने श्रापित क्यों किया? देह अभिमान में ला दिया और देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो गए। तो सबसे पहला विकार कौन सा लगा? जैसे देह अभिमान में आए सबसे पहला विकार कौन सा लगा आत्मा को? काम विकार, क्योंकि देह में फंस गए तो काम विकार के वश हो गए। और काम विकार के वश होने के कारण फिर श्राप मिल गया। तो बाबा अभी कहते हैं, अगर बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो इस काम विकार को जीतो, और उसके लिए फिर युक्ति बताते हैं। बाबा ने क्या युक्ति बताई है? एक तो आत्मा आत्मा भाई भाई, वो तो युक्ति है ही है, लेकिन दूसरी युक्ति बाबा क्या कहते हैं? भाई बहन। ये भी बहुत सुंदर युक्ति है। तभी तो दुनिया में लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती है। तो हम कहते हैं भाई बहन बनाते नहीं है, कोई जादू की छड़ी घुमा करके कोई भाई बहन नहीं बनाते हैं, लेकिन ये ज्ञान देते हैं कि अभी पवित्र बनो, योगी बनो, तभी आत्मा पावन बन सकेगी, तभी वापिस घर जा सकेगी। तो बाबा की सारी मुरली इसी पर है। सुनते बाबा के महावाक्य। आज 15/7/2026 है। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। एकमात्र ही उपाय है योग बल, जिससे आत्मा की कट निकलेगी। इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो, आनाकानी नहीं करो, ऐसे बहानेबाजी नहीं दो। योग के लिए अपने आप को बांधना पड़ेगा, तभी तो बाबा कहते कट निकलेगी। योग में कभी भी गफलत नहीं करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? बाबा युक्ति तो बताते हैं, याद में रहो, परंतु माया उसमें विघ्न डालती है। तो बाबा कहते हैं, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की वो कौन सी युक्ति बताई है जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है, और वो युक्ति से फिर माया को जीत सकते हैं। तो क्या युक्ति बताई है? उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई है, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। भले कहो दुनिया को भाई बहन बनाते भगवान, कैसे बनाते हैं? पवित्र दृष्टि रखवाते हैं, क्योंकि इसी से ही दुनिया पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं है। बच्चे आपस में भाई बहन हो, तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते हो, विकार के वश नहीं हो सकते हो। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते हैं। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है माया। हम भाई बहन है, एक बाप से वर्षा लेते हैं ये भूल जाते हैं, इसीलिए माया के वश हो जाते हैं। फिर बाबा को लिखते, बाबा काला मुंह कर दिया है ना, बाबा कहते हैं तो श्रापित कर देती है माया। ये भूल जाते हैं कि हम एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो सभी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है, एक वाक्य ही काफी है समझने के लिए कि भगवान हमें क्या देते हैं। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, और केवल इस कल्प में नहीं, कल्प कल्प मिलता है। बेहद का वर्षा कल्प कल्प मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर किसको मिला था? किसको मिला था? भारत को मिला था, क्योंकि भारत ही स्वर्ग है ना। तो बरोबर भारत को यह बेहद का वर्षा मिला था, अब वो नहीं है और फिर से मिल रहा है नहीं अभी वर्षा तो अब फिर से मिल रहा है। देखते हो अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, सब नरक में है, माया से रावण से श्रापित है। अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, है ना, किसी को श्राप मिल जाए तो कितना दुख होता है। श्राप कोई अच्छा थोड़ी होता है, बुरा ही होता है ना, दुख देने लिए ही श्राप होता है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। वर कहो, वर्षा कहो, वरदान कहो, उससे सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वो है बेहद का निराकार बाप और प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा है बेहद का निराकार बाप और ब्रह्मा बाबा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं, बेहद का साकार बाप केवल एक प्रजापिता ब्रह्मा ही है और बेहद का निराकार बाप भी केवल एक शिव बाबा ही है। तो बेहद का साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा के बिगर कोई होता नहीं। भल गांधी को बापूजी कहते थे परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो वो बापूजी तो नहीं हो सकता है, सारे सृष्टि का तो बापूजी नहीं। और कई तो यहाँ तक कहते हैं भले भारत का बापूजी है, भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराया कहते हैं, लेकिन भारत तो पहले से ही था ना, कि कोई जन्म थोड़ी दिया भारत को, वो तो पहले से ही था। तो इसलिए बाबा कहते हैं भल गांधी को बापूजी कहते थे परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो वो बापूजी हो न सके। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव, निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है। क्यों बनाया है अपना? वर्षा देने के लिए। श्रापित हो गए हैं तो वरदान देने लिए, वर्षा देने लिए, सुख देने लिए अपना बनाया है। मधुबन आते हैं किसके लिए? हाँ भट्टी वाले बताओ, मधुबन क्यों आते हो, किसके लिए आए हो? हाँ बाबा से पूरा वर्षा लेने। तो किस क्यों आते हो, किसके लिए आते हो? शिव बाबा से मिलने के लिए। परंतु वो तो निराकार है, सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, क्योंकि निराकार है तो वर्षा कैसे मिलेगा, निराकार है तो प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए बाबा कहते हमेशा कहो बाप दादा, केवल शिव बाबा के पास नहीं आए हैं, बाप दादा के पास आए हैं, क्योंकि शिव बाबा देंगे भी कैसे, ब्रह्मा द्वारा ही देंगे ना। तो शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वो निराकार है तो सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए कहा जाता है बाप दादा। तो हमेशा क्या कहना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, बाप दादा से मिलने जाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। दादा का नाम ब्रह्मा है और बाप का नाम शिव बाबा है। वो निराकार सबका बाप भी है और सबका दादा भी है। दादा फिर ग्रैंडफादर हो गया तो वो दादा है, फादर भी है तो ग्रैंडफादर भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर, बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है, फिर चाहे मुक्ति का वर्षा चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलता है। वो बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है, सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नाम ही है स्वर्ग, वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है, क्यों बाबा कहते हैं भारत सबसे पुराना है, क्या सिद्ध होता है ये कहने से कि भारत सबसे पुराना है? तो भारत सबसे पुराना है तो क्या सिद्ध होता है, जरूर सबसे नया था। सबसे पुराना है तो जरूर कभी सबसे नया भी था, तब तो अभी सबसे पुराना हो गया है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये अब तुम्हारी बुद्धि में है, है ना? भक्ति मार्ग वाले थोड़ी समझते हैं ये लक्ष्मी नारायण ऐसे भारत स्वर्ग था तब मालिक थे, ये तुम्हारी बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इनों को ये वर्षा कैसे मिला। किसी भगत से पूछो कि इनों को ये वर्षा कैसे मिला तो वो तो क्या कहेंगे, तो भगवान है, कौन देगा वर्षा, है तो भगवान है। तो बाबा कहते हैं तुम उनसे पूछ सकते हो कि इनों को वर्षा ये कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, ये सारा अब तुम्हारी बुद्धि में आया है, उनकी बुद्धि में नहीं है। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है 100वीं नंबर वार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। हर्षित होंगे, क्यों हर्षित होंगे, अंदर में खुशी होगी कि हम ही ये थे, फिर हम ही ये बन रहे हैं, तो उनको देख करके खुशी होगी, हर्षित होंगे। तो बुद्धि में है कि इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई थी, संगम युग पर ही पाई थी प्रारब्ध, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलती है, तो संगम पर ही ये प्रारब्ध पाई थी, दुनिया उस समय बदलती है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। ये भी जानते हो कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये ब्रह्मा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में ये ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, ये लक्ष्मी नारायण ही अगले यानी पिछले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे, अकेले ब्रह्मा सरस्वती थोड़ी होंगे, उनके साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, वही फिर अगले जन्म में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वो हम साक्षी हो देखते हैं, साक्षी हो देखते हैं, जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो फिर से कर रहे हैं। एक होता है राजाई घराना और दूसरा होता है प्रजा घराना, तो उसका भी तो घराना होगा ना, राजाई का भी घराना है, रॉयल फैमिली सारी, फिर प्रजा का घराना, उनकी भी फैमिली है। तो एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम, राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार कोई कम साहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो या क्या कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया, समझा सकते हो। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, कितना सहज है। अम्बा कौन है ये भी नहीं जानते, जाते हैं ना तो फिर हम कहते हैं अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे आप, तो कहेंगे अम्बा जी का दर्शन करने जाएंगे। बाबा कहते हैं उनको ये भी पता नहीं कि अम्बा जी कौन है, तो फिर बाबा कहते हैं अम्बा कौन है ये भी नहीं जानते हैं, तुम कहेंगे कौन है अम्बा, जगत अम्बा है, तो जगत अम्बा कौन है, कल्प पहले भी जगत अम्बा और जगत पिता थे, तो अम्बा का मंदिर यहाँ है, अबू रोड के पास ही है, पर गुजरात में चला गया, और फिर जगत पिता ब्रह्मा, तो उसका मंदिर फिर कहाँ है, अजमेर में, पुष्कर में। तो अम्बा का मंदिर यहाँ और प्रजापिता ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में। कल्प पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उनके बच्चे हम थे। कौन थे? जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, बैठे ना हम सब, जगत अम्बा के बच्चे जगत पिता के बच्चे बैठे हैं, ढेर हैं। परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते, बाबा के घर में इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। ज्ञान का सागर क्या करेगा, ज्ञान ही देगा बच्चों को। उनको न मनुष्य कहेंगे न देवता कहेंगे, शिव बाबा को न मनुष्य कहेंगे न देवता कहेंगे, उनको तो परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो, राम के लिए भी तुम समझा सकते हो, श्री राम के मंदिर में जाएंगे तो भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना भी अभी स्थापन हो रहा है, दोनों घराने अभी स्थापन हो रहे ना, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, तो चंद्रवंशी घराना भी अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है, ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से क्या जानते हो, कि हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, विकारी नहीं बन सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने ये युक्ति रची है, अभी भाई बहन आपस में शादी भी नहीं कर सकते। हाँ, भाई बहन में शादी तो होगी नहीं, लेकिन अगर वो उसी कहीं आसपास भी हो तो भी नहीं शादी, बिल्कुल दूर का ही कनेक्शन चाहिए तब शादी होती है। तो बाबा कहते भाई बहन विकार में जा नहीं सकते, तो बाप ने ये युक्ति रची है, ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार हम भी ब्रह्मा कुमारी, दोनों एक दो को कहते हैं, भले युगल है लेकिन वो कहती है तुम भी ब्रह्मा कुमार और मैं भी ब्रह्मा कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, खाली हम दोनों पति पत्नी नहीं, सारी दुनिया, तो सबको हम कहते हैं ना आप भी ब्रह्मा कुमार हो, क्योंकि ब्रह्मा आदि पिता, तो उसके हम सब बच्चे हैं, तो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। वास्तव में सारी दुनिया बीके है परंतु जानते नहीं है, हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, माया भी कम नहीं है, ले तो रही है वर्षा, खुशी तो है उसकी, लेकिन माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं ये भूल जाते हैं, क्या विघ्न डालती है सबसे पहले माया, भुला देती है कि हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं ये भूल जाते हैं। ये तो अच्छी रीति समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं। कितना बड़ा ये सत्य है जो भगवान के सिवाय और कोई नहीं कह सकता है कि सतयुग में और कोई धर्म नहीं होगा, केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, बाकी सब धर्म खत्म हो जाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है, तिथि तारीख भी लिखी हुई है। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए, क्या हाँ, ये तिथि तारीख भी बुद्धि में रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से इस वर्ष इस युक्ति से वर्षा लेते हैं, ये भी बुद्धि में रहनी चाहिए बातें। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल, जिससे कट निकलेगी। इसमें कोई गफलत नहीं होनी चाहिए, याद में गफलत नहीं होनी चाहिए, उस पर ध्यान देना है। इसीलिए मुरलियां मिलती है, बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली पढ़ते हैं तो ध्यान आता है कि बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। इसलिए मुरलियां मिलती है तो गफलत नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहां भी चला जाए, भले विदेश भी जाए, मुरलियां साथ है तो कहां भी चला जाए, हाँ उनको उनका मन विचलित नहीं होगा। तो निश्चय बुद्धि पक्का है तो बल कहां भी चला जाए। समझो मुरली नहीं भी मिलती है, अभी तो मिलती है जरूर, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो नेट के द्वारा, हाँ इंटरनेट के द्वारा तो मुरली सारी दुनिया को सहज मिल जाती है। हमने तो कई जगह देखा, विदेशों में देखा, हाँ वो हमको मोबाइल ही पकड़ाते, इसमें से मुरली सुनाओ। वो आजकल टैबलेट आता है ना, इतना बड़ा हो जाता है तो वो मुरली जैसा ही हो जाता है, तो कहते हैं बस इसमें से मुरली सुनाओ। तो हम कहते नहीं, हमको तो कागज वाली मुरली चाहिए। कहते हम तो कागज वाली मुरली रखते ही नहीं है, नो पेपर इसी में इसे ही हम सुनाते हैं। तो हमको तो आदत नहीं, हमको तो ये कागज वाली मुरली चाहिए। हम उनको कहते प्रिंट करके दो, हमको इसमें से नहीं पढ़ेंगे हम, हाँ ये नहीं चाहिए, हमको तो वो ओरिजिनल मुरली चाहिए जो बाबा बच्चों को भेजते थे। तो इसीलिए हमको जरा भी पसंद नहीं आता है। कोई भी यहाँ भी पढ़ते हैं क्या भारत में? मैं ऐसे नहीं, कागज से ही पढ़ते हैं। तो सचमुच मजा नहीं आता है उसमें से, फिर बार बार ऊपर स्क्रॉल करते रहो, फिर वो बंद हो जाए, हाँ फिर हमको नहीं ऐसे पसंद। तो फिर हमारे लिए प्रिंट करके देते थे। तो बाबा कहते हैं, हाँ तो बाबा कहते हैं हम तो कहीं भी चले जाओ, हाँ बाबा की मुरली मिलती है। हाँ तो बाबा कहते हैं लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, और कोई रास्ता नहीं है। योग बल से ही जो आत्मा पर इतने जन्मों की जंक लगी हुई है, जो वो चुंबक उसको खींच नहीं सकता, वो बाबा की याद से ही कट निकलेगी। इसमें कोई गफलत न हो, इसलिए मुरलियां मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहां भी चले जाएं। समझो मुरली नहीं मिलती है तो भी बुद्धि में तो है ना, हम बाबा के बन गए। मुरली भले न भी मिले तो भी ये पता है ना, हम बाबा के बन गए। बाबा ने समझाया है, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अभी तुम बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं, मन मना भव का महामंत्र केवल एक बाप ही बतलाते हैं, और कोई बतला न सके। बाप ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर है जरूर, परंतु किसकी बुद्धि में आता नहीं है। मन मना भव भगवान ने कहा है मुझे याद करो, ये अक्षर है जरूर, लेकिन किसकी बुद्धि में आता नहीं। अब तुम समझते हो बरोबर, कल्प पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहा था, बहुत कुछ कहा था गीता में। बाबा कहते आटे में नमक है, और क्या कहा था गीता में? एक तो मन मना भव, दूसरा क्या कहा था? देह सह देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तो सब देह और देह के धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मेरी शरण में आओ। ये सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है, सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। पोप भी गॉड को याद करता है, कहता है ओ गॉड फादर रहम करो। पोप भी कहता है ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ। ये उस समय बहुत था, क्योंकि अमेरिका और रशिया एक दो के इतने कट्टर दुश्मन हो गए थे, उसको कहते थे कोल्ड वॉर, कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है। दोनों देशों के पास इतने हथियार हो गए थे, वो कहे कि आप नहीं बनाओ, वो कहे आप पहले नहीं बनाओ, तो कौन नहीं बनाए, दोनों ही बनाते रहे और इतने एक दो के दुश्मन बन गए जो कभी भी इनके बीच युद्ध हो सकती थी। ये 60s की बात है। तो पोप दोनों क्रिश्चियन, तो पोप सब उनको कहता था आप लोग मिल जाओ, आप लोग मिल जाओ, क्योंकि क्रिश्चियन का हेड तो वही था, आप लोग मिल जाओ। हाँ, लेकिन वो मिले नहीं, अभी भी कहाँ मिले। और बाबा ने तो बता ही दिया है कि आखिर यही दो बिल्ले लड़ेंगे और मक्खन किसको मिल जाएगा, हम बच्चों को। तो बाबा भी कहते हैं उस समय ये बाबा ने खास कहा था, क्योंकि बहुत टेंशन हो गया था 60s में। तो बाबा कहते हैं, वो कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ, जो ये आपस में लड़े नहीं। ये पोप कहता था आप इनकी क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। अभी भी देखो युद्ध, चलो सीज फायर हो गया ईरान और अमेरिका का, लेकिन अमेरिका भी छोड़ता नहीं, ईरान भी छोड़ता नहीं। हाँ, वो अंदर ही अंदर युद्ध तो हो ही रही है। तो बाबा कहते हैं याद तो बाप को ही करेंगे ना, पोप भी किसको कहेगा, भगवान को ही कहेगा, याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद तो नहीं करेंगे, क्योंकि वही इनकी बुद्धियों को समझा सकता है, बुद्धियों को पलटा सकता है। शिव बाबा कोई पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, पावन बन गए तो ये जो रावण की छीछी दुनिया है इसमें रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया में कैसे रहेंगे। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ना, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं कि पावन बन जाएंगे तो फिर पावन दुनिया चाहिए, इस पतित दुनिया में कैसे रहेंगे, तो इतना भी नहीं समझते हैं। तो बाबा किसी के बारे में बता रहे, एक डॉक्टर आया बाबा के पास, एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा, इस दुनिया में कलयुग है तो कलयुग ही चलेगा, सदा कलयुग ही चलेगा। तो बाबा कहते अरे सदैव कलयुग कैसे चलेगा, उस डॉक्टर की बुद्धि में इतना भी नहीं आता है कि सदैव कलयुग कैसे चलेगा। कलयुग कोई अच्छा है क्या, जो कहते हो कलयुग सदा चलेगा अच्छा है क्या, समझते थोड़ी है। सिर्फ उसमें भावना थी, और भावना क्या थी, ज्ञान व्यान कुछ नहीं था, लेकिन वो सबको माउंट आबू भेजता था, माउंट आबू जाओ माउंट आबू जाओ, डॉक्टर है, अब टेंशन था तो जाओ माउंट आबू जाओ, वहां तुमको शांति मिलेगी, माउंट आबू में जाओ आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, माउंट आबू जाओ, पर खुद नहीं सीखता था। तो वो तो यही समझता था ये सदा ही कलयुग चलेगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ भावना थी, औरों को ले आते थे उनको तीर नहीं लगा, उनको तीर नहीं लगा, पर जो आते थे उनको तीर लगता था, और कोई आने वालों को तीर लग जाए तो भी कुछ न को दलाली तो मिल जाएगी ना, दूसरों को भेजता था तो उसको थोड़ी तो दलाली मिल जाएगी उससे, क्योंकि भले खुद नहीं माना। उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगी, स्वर्ग में तो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा स्वर्ग में, भले दूसरों को कहता था, खुद नहीं मानता था, पर आ तो जाएगा स्वर्ग में। बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं तो बाप समझाते हैं, मैं सबका बाप होना, कोई मानते नहीं है कि शिव बाबा कैसे आएगा, अब ये भी कई नहीं मानते, शिव बाबा कैसे आएगा, उसका तो नाम रूप कुछ है ही नहीं, वो कैसे आएगा। अरे बाबा कहते, अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ, आत्मा भी तो आती है ना, आत्मा भी दिखाई थोड़ी देती है, परंतु वो प्रवेश करती है तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्या, मैं भी तो एक आत्मा हूँ पर परमात्मा हूँ। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता हूँ क्या, नहीं तो मैं फिर कैसे आऊं, तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं, तो कैसे आऊं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ, तो बाप कहते हैं, मैं आता ही भारत में हूँ, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूँ, तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। अब ये भी देखो बाबा राज बताते हैं, तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ, तो तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते यही मेरा धंधा है, कौन सा धंधा है बाप, भगवान का, मेरा धंधा यही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसीलिए गाया हुआ है। क्या धंधा करते हैं भगवान, पुरानी दुनिया को खत्म कर नई दुनिया लाते हैं, ये धंधा बाबा ही करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना, इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश। फिर तुम पालना करेंगे या बाबा पालना करेगा, हम पालना करेंगे ना, लक्ष्मी नारायण को पालनहार कहते हैं तो वो तो हम ही जाके बनेंगे, तो जरूर पालनहार हम ही होंगे। वैसे भी राजा रानी को पालनहार मानते हैं, शिव बाबा तो पालना करते नहीं, शिव बाबा तो न्यारा प्यारा है, वो तो स्थापना कराते हैं, फिर पालना तो हम बच्चों द्वारा ही होती है। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे, रोशनी मिली है ना, काली का मंदिर देखेंगे समझेंगे ये तो झूठा चित्र है। काली बरोबर कौन है, जिस प्रकार से उनकी शक्ल दिखाते हैं काली की, बाबा कहते ऐसे थोड़ी है, काली ही जगदम्बा है, जगदम्बा का चेहरा तो कितना मीठा प्यारा दिखाते हैं, पर काली का चेहरा तो भयंकर दिखाते हैं। तो काली बरोबर जगदम्बा ही है, परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, वहाँ जो बंगाल में कलकत्ता में बड़ा मंदिर है काली का, उसके पास भैरव का मंदिर है, तो वहाँ पर बलि चढ़ती है, काली के मंदिर के साथ साथ ही है, तो वहाँ वो बहुत, तो हमने जब कलकत्ता गए थे हमने कहा हमको वो काली का मंदिर देखना है, तो सचमुच हम गए थे, पर इतनी गंदगी वहाँ, क्योंकि वो बलि चढ़ती है वहाँ भैरव के आगे बाहरी, तो बहुत लोग थे, बहुत लोग, इतनी भीड़ थी काली के आगे, काली को बहुत मानते हैं ना बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। जगदम्बा के मंदिर में तो लाखों आते हैं, यहाँ आते हैं अम्बाजी जरूर जाते हैं, तो जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है, छोटी सी मूर्ति रखी है, गए ना अम्बाजी का मंदिर, वहाँ तो दिखाई भी नहीं देती है मूर्ति, पता नहीं है या नहीं, कोई मूर्ति है या है ही नहीं, है ही नहीं मूर्ति, अच्छा तो छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगदम्बा। अब जगदम्बा तो एक होनी चाहिए, माँ तो एक ही होती है ना, जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसे बनाया था, साकार बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। सिंध में काली का मंदिर बनाया तो कैसे बनाया था, एक बार किले में बम फटा, किला वहां होगा तो वहां बम फटा, तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है काली माता गुस्से हुई है इसीलिए बम फटा, तो बहुत मरे होंगे, तो काली का मंदिर बनाओ तो ये जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं इनका नाश हो जाएगा। तो एक फकीर ने कहा कि या कि काली माता गुस्से हुई है, बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया कि काली मन काली थोड़ा उसको शांत करेगी, तो बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन, कौन है काली, कुछ भी नहीं जानते, तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम नहीं जानते हो। अंत में तो काली का ही स्वरूप होगा ना, असुरों का नाश करने वाली तो काली चाहिए, जगत अम्बा तो बहुत मीठा मीठा रूप है तो काली चाहिए, तभी तो आसुरी शक्तियों का विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम न जानो, समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है, बाबा ने बहुत कड़वा सत्य बताया, पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। बाबा कहते दुख चालू हुआ, शादी हुई दुख चालू हुआ, जब कुमार कुमारी शादी करते हैं तो इसलिए कहा जाता है ना ये शादी बर्बादी, तो कर तो ये दिल्ली का लड्डू खाओ तो भी पछताओ और नहीं खाओ तो भी पछताओ, कहेंगे शादी करे शादी करे, और शादी जो कर लेते हैं तो कहेंगे पछताते हैं कि क्यों की। तो बाबा कहते हैं पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं, तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए, आता है क्या किसी को ख्याल, हाँ नहीं, बाबा कहते ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं ये रावण राज्य खत्म होना है, ये है विकारी ग्रस्त व्यवहार, देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं पर ये किसको भी पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, शास्त्रों में फिर लिख दिया है कि वहां भी विकार थे, परंतु वो तो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, ये बातें और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है, चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे, चक्र भी पूरा लगाना पड़े तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया, समुद्र का तो चक्र लगा न सके, सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं, अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है, ये बाबा राज समझा रहे हैं कि ऊपर में जो थोड़ी आत्माएं जो है अभी बची हुई है परम धाम में वो भी आती रहती है, मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं, जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएगी, अभी तक आ रहे हैं आत्माएं थोड़ी बहुत है परम धाम में अभी वो आ रही है, तो जब वहां से आना आनी पूरी हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, अभी तक आत्माएं आ रही है और अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, उनका आना बंद होगा हमारी कर्मातीत अवस्था शुरू हो जाएगी और वापस जाना शुरू हो जाएगा, तो तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। वो लास्ट आत्मा या आत्मा आएगी और हमारी पहली आत्मा जाएगी, मिलेंगे आपस में कहीं सूक्ष्म वतन में मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? जो लास्ट वाली आत्मा नीचे उतरे और हमारी पहली आत्मा ऊपर जाए, तो पहले तो शिव बाबा जाएंगे, फिर उनकी बारात जाएगी। तो बाबा कहते हैं उनका आना और तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं अभी भी, तो ये समझ की बात है ना, अभी तक वृद्धि होती रहती है। पहले 100 करोड़, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 40 करोड़ था भारत, भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। तो उस समय ये नारा लगाते थे 40 करोड़ का एक लंगोटी वाला, महात्मा गांधी सब जगह जाते थे तो 40 करोड़ का एक लंगोटी वाला ऐसे कहते थे। तो 40 से कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया, फिर 120 करोड़, अभी 140, अभी तो उस दिन का 145, कितने करोड़ होते जा रहे हैं। भारत में कितनी वृद्धि होती जा रही है, चाइना से भी ज्यादा आगे चला गया भारत की जनसंख्या। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, तो ये समझ की बात है ना, हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे। तो परम धाम में पहले पहले कौन जाएंगे, वो खाली हो जाएगा परम धाम, वैसे खाली तो होना नहीं चाहिए। तो कुछ लास्ट वो आत्माएं आएंगी और हम पहले नंबर वाली आत्माएं जाएंगे। तो हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। सुना, हम परम धाम में जाएंगे तो जब हम सत्युगी आत्माएं पहले परम धाम में जाएंगी, तो उस समय कलयुगी आत्माएं वहां कोई रहनी नहीं चाहिए। तो हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। अब ये है विस्तार की बातें। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो। अब विस्तार की बातें बताए, फिर बाबा कहते हैं अभी बाबुल, प्यारे बाबुल को याद करो। तुमको फायदा है बाप को याद करने में ही, और विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, तुमको फायदा ही है बाप को याद करने में। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। ये है साइंस का घमंड। उस समय 1968-69 उस समय ये होड़ लगी हुई थी चंद्रमा पर जाने की होड़। तो सबसे पहले तो अमेरिका ने किया, फिर रशिया ने किया। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। ये है साइंस का घमंड। अति में जाते हैं, अब मून में कुछ खड़ा थोड़ी है, और क्या ले आए वहां से, मिट्टी ले आए, पत्थर ले आए, और क्या लाए। मून में कुछ खड़ा थोड़ी है, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो। वो तो केवल चंद्रमा पर गए, चलो कोई मंगल पर ग्रह पर गए, तुम तो उनसे भी पार जाते हो। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, ये मेरा पाठ है। भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पाठ है। है तो ड्रामा ना, जैसे तुम पाठधारी हो मैं भी पाठधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा तो होती ही है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उनको ऐसा लायक किसने बनाया। ये सुख धाम के मालिक थे, अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। कितना भी धनवान है तो भी दुख न हो उसको, ऐसा कोई नहीं है। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को हो जाता है। अभी तो ये पैसा आदि भी सब मिट्टी में मिल जाना है, सब मिट्टी में मिल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापिस घर जाना है। हाँ, वो तो सब जानते हैं कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापिस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब, कब जाएंगे, जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। बाबुल माना पिता, एक बाबुल को प्यार से याद करना है। दूसरा, ज्ञान की रोशनी मिली है इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहां भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले दे अभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रहे विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले दे अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है, क्या है पढ़ाई का मूल लक्ष्य, दे अभिमान से न्यारा हो दे ही अभिमानी बनना। पहला लक्ष्य तो यही है ना, दे अभिमान से न्यारा हो दे ही अभिमानी बनना। इस दे अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है, कैसे होंगे दे अभिमान से न्यारे, इसकी इसकी विधि है सदा स्वमान में स्थित रहना। तो स्वमान में स्थित रहेंगे तो देह अभिमान से मुक्त रहेंगे। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः फिर मान भी प्राप्त होता है। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान भी प्राप्त होता है। तो सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देता है। सम्मान, स्वमान, तो विश्व उन्हें सम्मान देता है। स्लोगन, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके लिए बाबा कहते हैं, अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति के विकराल रूप शीतल हो जाएंगे। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज देखो हमारे बीच दामिनी बहन आई है।